डॉक्टर उत्तम जैन जी समय सार नंदु अन्नाडु गाता
सब गाथाएं खुलासा करते हैं, 16 गाथाओं का भावार्थ बता देते हैं और फिर समय होगा तो कोई एक उत्कृष्ट श्लोक सुनाएंगे। गाथा 13 पे आप आ जाइए, पेज नंबर 16। 12वीं गाथा में तो ये कहा जा चुका है कि व्यवहार नय का जो उपदेश है कथनचित किसी काल में किसी को प्रयोजनवान है, पर जाना हुआ प्रयोजनवान है, कर्ता बन जाए उसका कार्यों का तो वो फिर प्रयोजन का घात करने वाला हो जाता है। यहाँ तक बात आई, इसलिए व्यवहार से उपदेश देने लायक कौन है कि जो अभी अपरम भाव में ठहरा है, और परमार्थ से उपदेश किसके लिए है कि जो परम भाव में आ गया है। तो अभी ये विचारने की बात है। यहाँ पर 13वें गाथा में एक नया प्रकरण चालू हो गया, नए से मतलब ये है 12वीं गाथा तक समय सार पूरा हो गया। संक्षिप्त रुचि वाले शिष्यों के लिए 12 गाथाएं पर्याप्त है, ऐसा जयसेनाचार्य ने टीका में लिखा है। 13वीं गाथा से विस्तार रुचि वालों के लिए अब प्रकरण फिर से विस्तार से चालू कर रहे हैं। तो 13वीं गाथा में भी सम्यक दर्शन की बात आई। क्या बात आई पढ़ते हैं, 13वीं गाथा पढ़ते हैं पहले, यहाँ पर जो गाथा लिखी है इसके बाद इधर एक अर्थ पढ़ते हैं। भूयथेणा विगदा जीवा जीवाय पुण्य पावं च आशव संवरणिज बंधो मोक्षो यशामतम। पढ़िए इसका अनुवाद। थेणावी गदा भूतार्थ नैसे जाना गया, किसको जाना, जीव को अजीव को या पुण्य पावं च पुण्य पाप को आशव आशव को संवर संवर को निर्जर निर्जरा को बंधो मोक्षो बंध और मोक्ष को भूतार्थ नैसे अगर जाना गया है तो वही सम्यक दर्शन। ये गाथा में इतना आया है, वो क्या है, सम्यक दर्शन है। 9 पदार्थों को जानना सम्यक दर्शन कहा है। और नौ पदार्थों में ऐसा नियम है कि अगर भेद को जाना तो वो व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है, और व्यवहार सम्यक दर्शन भी उसके लिए कहलाता है जिसने अभूत आगे भूतार्थ न ऐसे स्वभाव को जाना। स्वभाव को जानने वाले को निश्चय सम्यक दर्शन होता है, निश्चय सम्यक दर्शन वाले के भेद को जो जानना होता है वो व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। और यहाँ तो सम्यक दर्शन निश्चय की चर्चा कर रहे हैं सीधी, कि जो नौ पदार्थों को भूतार्थ से जानता है माने समझो वो सम्यक दर्शन। ये भूतार्थ का प्रयोजन क्या है यहाँ पर हम पढ़ते हैं गाथा के बिंदुओं पर विचार करते हैं। भूतार्थ नय, निश्चय नय या शुद्ध नय, ये नौ तत्व, इन नए से नौ तत्वों को जानना सम्यक है। इनको ये अलग अलग नाम दे दिए, भूतार्थ ने भी नाम दिया, निश्चय ने भी नाम दिया और शुद्ध ने भी उसका नाम दिया है। वहां भूतार्थ नए से जानने का अर्थ यह है कि जो बाह्य तीर्थ की प्रवृत्ति के निमित्त भूत, बाहर के यानी तीर्थ दो प्रकार का होता है, एक अंतर तीर्थ और एक बाह्य तीर्थ। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की एकता ये अंतर तीर्थ है, समझ आया। और बाहर में जो धर्म प्रभावना के जितने भी कार्य हैं, चाहे वो जिनवाणी का प्रचार हो, चाहे जिनवाणी का अभ्यास हो, चाहे देवशास्त्र गुरु की भक्ति हो, चाहे विधान हो, आयोजन में ये जो कुछ भी धर्म प्रभावना के बाह्य निमित्त है वो सब बाह्य तीर्थ कहलाते हैं, समझ आया ना। और उनमें भी तुम लगा लेना, अगर मान लो हमने जिनवाणी के शब्दों का उच्चारण किया, पाठ किया, तो वो भी बाह्य तीर्थ में आता है, भले उसमें नए लागू हो अनुच्चरित असद्भूत व्यवहार नए, समझ में आएगा नहीं, लेकिन है वो व्यवहार तीर्थ। यहाँ शुभ भाव हुआ है, जिनवाणी की भक्ति का भाव हुआ है, जिनेन्द्र की भक्ति का भाव हुआ है, गुरुदेव की वाणी सुनने का परिणाम हुआ है, ये व्यवहार तीर्थ है। व्यवहार तीर्थ शुभराग रूप होता है, सुनिए जरा, ये अशुद्ध पर्यायार्थिक निश्चय नय का कथन है। शुद्ध नय से तो देखा जाए, शुद्ध पर्यायार्थिक नय से देखा जाए तो एक शुद्धात्मा की जो अनुभूति रूप पर्याय है वो ही तीर्थ का वास्तव में निश्चय से, पर्यायार्थिक निश्चय से वो तीर्थ है। और अगर त्रिकाली तीर्थ की बात की जाए तो जो आत्मा त्रिकालिक आत्मा है, जो एक नव तत्व में छिपी हुई एक आत्म ज्योति है, वो ही अनादि अनंत तीर्थ है और उसके आश्रय से पर्याय तीर्थ प्रवर्तता है, और निश्चय पर्याय तीर्थ के निमित्त से बाहर में व्यवहार तीर्थ भी प्रवर्तन करता है, सही माया। ऐसा उनमें परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है और स्वतंत्रता भी। अरे निमित्त नैमित्तिक संबंध परतंत्रता वाला नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध ये बताता है कि निमित्त न्यारा है और नैमित्तिक भाव न्यारा है। तो निमित्त नैमित्तिक कहने से परतंत्रता नहीं समझ में आती है, ज्ञानियों को स्वतंत्रता समझ में आती है, और जो उसके मर्म को नहीं समझते उनको लगता है निमित्त की बात की ये तो परतंत्रता होगी। निमित्त की बात में परतंत्रता नहीं है, निमित्त की बात में स्वतंत्रता की घोषणा। क्या ख्याल में ऐसा नियम है, हम आपको क्या कहें, समंत्र भद्राचार्य ने स्वयंभू स्तोत्र में एक श्लोक लिखा जिसमें उन्होंने ये लिखा, बाह्ये तरोपाधि समग्रतेयम् कार्येषु ते द्रव्य गता स्वभाव। हे जिनेन्द्र भगवान, बाह्य सन्निधि और अंतर सन्निधि, बाह्ये तरोपाधि, अंतर उपाधि और बाह्य उपाधि, अंतर उपाधि कहते हैं तुम्हारे से उपादान को और बाह्य उपाधि कहते हैं निमित्त को, समझाया। बाह्य तरोपाधि समग्रतेयम्, इन दोनों उपाधियों की समग्रता में सन्निधि में कार्येषु ते द्रव्य गता स्वभाव, जितने भी कार्य होते हैं इनकी सन्निधि में होते हैं ये द्रव्यगत स्वभाव। क्या कह रहे हैं समंत्र भद्राचार्य माने, मालूम आपको क्या है, कुंद कुंद आचार्य के हमने पता लगाए तो इतने प्रशंसक नहीं मिले जितने प्रशंसक आचार्य मिले हमें, किसके, समंत्र भद्राचार्य। और कौन से वे आचार्य थे आपको ख्याल है, जगह जगह घूम करके जितने विरोधी राजा आजा थे उनको चैलेंज देते थे, बाधार्थी विचराम में हम नरपते शार्दूल विक्रीडितम, मैं वाद विवाद करने के लिए सिंह की भांति निर्भय घूम रहा हो, जिनको विवाद करना हो आओ कर लो, ये समांतर भद्राचार्य की बात कर रहा हूं भैया। और तो और राजा के सामने ये बोल दिया कि यस्यास्ति शक्ति राजन, हाँ राजन, इस राज्य में जिसकी शक्ति हो, यस्यास्ति शक्ति राजन बदतु सा निर्ग्रंथवादी, और निर्ग्रंथवादी इस मुनिराज के सामने बात कर ले। ऐसे चैलेंज देने वाले मुनिराज हुए, क्योंकि वे परीक्षा प्रदानी मुनिराज थे, वे महावीर के सामने झुकने को तैयार नहीं हुए। और पूछा उनसे कि मैं तुम्हें नमस्कार क्यों करूं, कारण बताओ, बिना कारण के हमारा माथा हर कहीं नहीं झुकता। पूछा आप्तमीमांसा की रचना की, यानी देवागम स्तोत्र लिखा, उसमें पहले ही उन्होंने तर्क दिया, भगवान की तरफ से खुद ही तर्क दिया और खुद ने ही अपना तर्क उठाया। सही में तो तर्क दिया, देवागम नभोयान चामरादि विभूतिया, देवता जो है हमारे पंच कल्याणक मनाने को आते हैं, हम आकाश मार्ग में गमन करते हैं, हमारे 64 चमर ढूंढते हैं। समंत्र भद्र कहते हैं ये तीनों जो चीजें हैं माया विश्व दृश्यन्ते, ये तो मायाचारियों में भी दिखाई देते हैं। ना नातस्तो, इसलिए तुम मुझ जैसे परीक्षा प्रधानियों को इन कारणों से महान नहीं हो, मैं सिर नहीं झुकाऊंगा। दूसरा श्लोक आया और तर्क दिए, मेरे शरीर की छाया नहीं पड़ती है, मेरे पटक ये जो पलक है मटकती नहीं है, ऐसा मेरे में अतिशय है। तो ये तो मिथ्या दृष्टि देवों में भी पाया जाता है, इस कारण से आप मुझे महान नहीं हो। तो किस कारण से आप महान हो, मेरे लिए तो आप महान इस कारण से जरूर हो। तो उन्होंने तीसरा तर्क दिया, ज्ञानावरण यो हानि, क्या कह रहे हैं, दर्शन तुम्हारे से आवरण और उसका हानि जो हुई है, मोह की हानि हुई है, और आवरण माने ज्ञानावरण आदि दर्शनावरण आदि की हानि से जो हमारे सर्वज्ञ दशा प्रकट है, हाँ ये बराबर अब हमारे लिए आप वंदनीय हो, मेरी पर्याय में अभी ये दशा प्रकटी दोषावरण यो हानि, वहां ये शब्द है, दोष माने 18 दोष और आवरण माने ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि, इनकी हानि होने पर ही देव पूज्य होते हैं, जिनके इनकी हानि ना हो वे देव पूज्य नहीं होते, जिनके आवरण दिखाई दे या जाए वो पूज्य नहीं होते। तो बे समंत्र भद्राचार्य कह रहे हैं, बाह्य तरोपाधि समग्रते हम कार्येषु ते द्रव्यगता स्वभाव, ये द्रव्यगत स्वभाव है, निमित्त कोई उपादान के अधीन नहीं है, उपादान कोई निमित्त के अधीन नहीं है। हमारी भाषा जो अभी ऐसी चलने लगी है खुमारी में, क्या भाषा चलने लगी है कि निमित्त तो आकाश से उतर के आता है, ये भी भ्रांति में मत रहना, निमित्त कोई उपादान के अधीन नहीं है, हर पदार्थ स्वयं के लिए उपादान है और अन्य में अनुकूल बने तो वो तो तुम जिसको पराधीन घोषणा करोगे माने उपादान उपादान की पराधीनता की घोषणा हो जाएगी। क्या कह रहे, मजा अगर लेना है जिनवाणी के आनंद का और ज्ञान का महल कैसा होता उसका, अगर तुम्हें आनंद रस चखना है तो जरा बड़े बड़े आचार्यों के ग्रंथों में भी प्रवेश करने की कोशिश करो, आनंद ही आनंद मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, दूसरा है ही नहीं उसमें कुछ। आनंद की अनुभूति करने वाले छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले उन आचार्यों ने भी सब ग्रंथ लिखे हैं, चाहे किसी भी अनुयोग के क्यों ना हो, सबका प्रयोजन तो एक ही होता है, आचार्यों के प्रयोजन में कभी भेद। देखो क्या लिख रहे, भूतार्थ ऐसे निश्चय ऐसे शुद्ध ऐसे नव तत्वों को जानना सम्यक तो है, वहाँ भूतार्थ से जानने का अर्थ ये है कि बाह्य तीर्थ की प्रवृत्ति के निमित्त भूत अभूतार्थ नए, व्यवहार नए और अशुद्ध नए, ये तीनों जो हो गए व्यवहार नए के पर्यायवाची नाम है। ये इनसे जीव अजीव पुण्य पुण्य पाप आश्रव संवर निद्रा बंध और मोक्ष, इन नव तत्वों का भेद रूप उपदेश दिया गया है। सो वह भेद रूप उपदेश व्यवहार तीर्थ के प्रवर्तन के लिए दिया गया, काय के लिए दिया गया है, व्यवहार तीर्थ के प्रवर्तन के लिए दिया गया। परंतु भूतार्थ नय से वह जितना भी उपदेश है वो भूतार्थ नय से उनमें नव तत्वों में छिपी हुई एकत्व रूप आत्म ज्योति को प्राप्त करने के लिए दिया गया है। नव तत्वों का उपदेश नव तत्वों में उलझने के लिए नहीं दिया गया है, नव तत्वों का उपदेश नव तत्वों में छिपी हुई एक सम्यक ज्ञान आत्म ज्योति है उसको पाने के लिए नव तत्वों का उपदेश। मैं आपको कहता हूं प्रवचन सार में माला का दृष्टांत आया है, माला में तीनों चीजें देखी जाती हैं। माला में अखंड धागा देखा जाता है, माला में अनेक गुरिये जो मणका देखे जाते हैं, और माला में उन मणकों की आभा देखी जाती है। और तीनों का नाम माला है, किसी एक का नाम माला नहीं। क्या कह रहे? लेकिन हमारी दृष्टि जब अखंड पे जाना चाहेगी तो एक एक आभा देखेगी तो भी वो अखंड को नहीं पा पाएगी, एक एक दाने को विषय बनाएगी तो भी वो विकल्पों ही में उलझी रहेगी, अखंड को नहीं पा पाएगी। और जो अखंड सब में व्याप्त एक धागा है, अगर उस पर दृष्टि टिक जाएगी तो सारे भेद गौर हो जाएंगे और अभेद की अनुभूति हो जाएगी। समझ में आया कि ये दृष्टांत प्रवचन सार में आया है। तो यहाँ भी ये कह रहे हैं भूतार्थ नय का अर्थ ये है कि नव तत्वों को जानने का अर्थ ये है कि नव तत्वों में छिपी हुई एक आत्म ज्योति को जानना, ये भूतार्थ नय से जानने की बात कर रहे हैं। और यहाँ तो दो नए अलग ढंग से प्रयोग किए, भूतार्थ नय से एकत्व आत्म ज्योति, जो छिपी हुई आत्म ज्योति है उसे प्राप्त कर, यानी काय में प्राप्त किया, अभी विकल्पों में प्राप्त किया। काय में प्राप्त किया, पहले निर्णय के काल में विकल्पों में वस्तु प्राप्त होती है, पीछे अनुभव के काल में विकल्प नष्ट हो जाते हैं, शुद्ध नय में वस्तु झलकने लग जाती है। शुद्ध नय माने अपनी निर्मल ज्ञान की पर्याय, उसका नाम क्या है? शुद्ध नय। तो देखो क्या कह रहे हैं, शुद्ध नय से उसकी अनुभूति होती है। एकत्व काय से ज्ञापित होता है, भूतार्थ नय से एकत्व को प्रकट करके प्राप्त करके शुद्ध नय से उसकी अनुभूति प्रकट करे। इसका अर्थ ये है कि जो भूतार्थ नय में नौ में से मैंने एक ज्ञान ज्योति को पकड़ा है, ये तो केवल विकल्प है। ज्ञान ज्योति को सच्चा पकड़ा कब कहलाएगा कि जब आपका वो विकल्प टूट जाएगा, वो निश्चय नय का पक्षपात चला जाएगा, भूतार्थ नय का पक्षपात चला जाएगा, और अनुभूति करने वाली पर्याय और जिसका अनुभव किया जाना है ऐसा द्रव्य का स्वभाव, दोनों में भेद मिट जाएगा, दोनों एकाकार एक रस हो जाएंगे, उस काल में आत्मानुभूति होती है। और उस काल में नौ तत्वों का जानना सम्यक कहलाता है, और नौ तत्वों का जानना भी व्यवहार कहना, ये व्यवहार नय का कथन है, भूतार्थ का कथन है, और उनमें छिपी हुई एक आत्म ज्योति का अनुभव करना ये निश्चय है, ये भूतार्थ नय का कथन है। वो भूतार्थ नय का है और ये भूतार्थ नय का। अभी आगे देखो, जो शुद्ध नय से अनुभूति होती है उसी का नाम आत्म ख्याति है। भैया एक बात बताओ, ख्याति किसे पसंद नहीं? कितनी गहरी नींद आ रही हो रात्रि में, कोई सोता हो और उसकी प्रशंसा शुरू कर दो और उसके कान में भर पड़ जाए, बोलो नींद आएगी कि जाग जाएगा? जाग ही नहीं जाएगा, कपड़े पड़े सब ठीक करेगा, टोपी टेढ़ी तो नहीं है जरा ठीक कर लेगा। क्यों? मेरी प्रशंसा हो रही है। पर तेरी प्रशंसा नहीं हो रही है, तेरी प्रशंसा शुद्धात्मानुभूति में होती है, दूसरी जगह कोई प्रशंसा करने वाला पैदा नहीं हुआ। क्या कह रहे? मेरे स्वभाव की प्रशंसा तुम करोगे, जिनवाणी करेगी कि मेरा स्वभाव का अनुभव करके मैं उसे प्रशंसनीय अनुभव करूंगा। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए इसको लिखा है इन्होंने, ऐसी आत्मा की ख्याति। किसकी ख्याति? और हम कहां उलझ जाते हैं? आत्मा भर को छोड़ के सबकी ख्याति में हम उलझ जाते हैं। और जिन ख्याति में हम उलझ जाते हैं, जिन पदों में हम उलझ जाते हैं, ये सब के सब पद अपद। एक ज्ञान पद ही पद है जो मोक्ष का साक्षात कारण है, अन्य जितने भी पद हैं वे तो संसार में परिभ्रमण कराने वाले पद हैं। यहां तक कि चक्रवर्ती का भी पद है वो संसार का कारण है। और अभी हम तीर्थंकर नामकरण प्रकृति को संसार का कारण तो अभी नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी ने तीर्थंकर प्रकृति बांधी है, अब वो जब तक तीर्थंकर प्रकृति उदय में आके पूरी नहीं खिल जाएगी मोक्ष नहीं जा सकता। क्या कह रहे? उसे अगर मोक्ष जाना है तो पहले तीर्थंकर प्रकृति का क्षय करो पूरा, आयोजन में तो मोक्ष जाने के लायक तुम्हारी दशा बनेगी। इसलिए यहाँ कहना चाह रहे हैं बाह्य पदों की ख्याति यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ तो किसकी ख्याति है? आत्मा की ख्याति। और आत्मा की ख्याति कहो कि सम्यक दर्शन कहो, एक ही बात है। ज्ञानानुभूति कहो, एक ही बात है। सब निर्दोष है, कोई उसमें दोष? आगे व्यवहार नए आत्मा को अवस्थाओं द्वारा विविध प्रकार से दिखलाता है। व्यवहार नए आत्मा की अवस्थाओं को अनेकाकार दिखलाता है, परंतु शुद्ध नए तो आत्मा को एक चैतन्य चमत्कार मात्र दिखलाता है। इसलिए उस एकाकार स्वरूप आत्मा का अनुभव करना चाहिए और पर्याय बुद्धि का एकांत त्यागना चाहिए। अभी जो गुरुदेव बोल रहे थे ना, वो बोल रहे थे ना कि जल्दी से पर से हट के स्वभाव में आओ, बिल्कुल यही बात यहाँ की है कि जो अनेकाकार जो अनुभव है बाहर और राग का, वहां से हट करके अपने स्वभाव में आओ, शुद्ध आत्मा की अनुभूति करो। यही वास्तव में कार्य करने लायक है, पर्याय बुद्धि छोड़ने लायक है और दृढ़ दृष्टि करने लायक है। लेकिन ध्यान रखना, जिसे छोड़ना उसे समझ तो लेना, उल्टा ना हो जाए कहीं है। जैसे किसी को सोने का और पीतल का ज्ञान ना हो और उसे पीतल को छांट के अलग करना है, अब कहो सोने के टुकड़े फेंक दे और पीतल के रख ले, क्यों? क्योंकि ज्ञान होवे, दोनों एक से पीले दिख रहे हैं। एक से पीले दिखने से स्वर्णत्व की पहचान नहीं होती है, स्वर्णत्व की पहचान के अलग लक्षण हैं, वे लक्षण सीखना पड़ेंगे और फिर सोने को जानना पड़ेगा, फिर सोना ग्रहण में आएगा और जो सोना नहीं होगा वो त्याग करने में आएगा। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तरिए चले। एक गाथा यहाँ तक आए, अब 44 नंबर बिंदु। प्रमाण की विषयभूत वस्तु, प्रमाण की विषयभूत द्रव्य पर्याय में वस्तु में द्रव्य स्वभाव की मुख्यता से अनुभव कराए उसका नाम द्रव्यार्थिक नय है, और पर्याय की मुख्यता से अनुभव कराए उसका नाम पर्यायार्थिक नय। पूरे का नाम, पूरी वस्तु का द्रव्य पर्यायात्मक का ज्ञान कराए उसका नाम प्रमाण है, और उनमें विधि पूर्वक एक को मुख्य करे और एक को गौण करे, ऐसा जो एक एक अंश का ज्ञान कराए उसका नाम नय। और नय और प्रमाण से वस्तु हृदयंगम होती है और शुद्ध नय से वस्तु का अनुभव होता है। शुद्ध नय समस्त भेदों को गौण करता है, देखो आया ना 45 नंबर। शुद्ध नय समस्त भेदों को गौण करता है, वहां शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा के अनुभव में नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती है, प्रमाण का भेद विकल्प विलय हो जाता है, निक्षेप के समूह का विकल्प दिखाई नहीं देता है, अतः अनुभव में द्वैत भाषित ही नहीं होता है, क्योंकि अनुभव अद्वैत और निर्विकल्प ही होता है। ये हो गई अपनी 13वीं गाथा। अभी 14वीं 15वीं गाथा एक ही जैसी है, थोड़ा अंतर बताएंगे क्या अंतर है। 14वीं गाथा पर आ रहे हैं, 14वीं गाथा पढ़ दूं जरा पहले इसमें से। जो पश्यदिय पाणम अवद कोठम अनन्यम मणिदम अविशेष मसंजोतम तम शुद्ध नयम व्याणी। पढ़िए, ध्यान दें। जो पश्यदि अपानम, जो आत्मा अपने आत्मा को पश्यदि माने देखता है, या देखने का अर्थ सामान्य अवलोकन नहीं है, देखता है माने श्रद्धान करता है, समझ में आ गया कि नहीं? जो पश्यदि अपानम, क्या कैसा देखता है आत्मा को, कैसा श्रद्धान करता है आत्मा का। अबद्ध उठम, आत्मा कर्मों से बंधा नहीं है और कर्मों ने आत्मा को छुआ नहीं। स्पृष्ट, अबद्ध स्पृष्ट माने आत्मा बंधा नहीं है और आत्मा को कर्मों ने छुआ नहीं। ये हो गया पहला बोल। पहला बोल समझ में आएगा तो द्रव्य परावर्तन मिट जाएगा। अब हम एक एक बात बताते चलते, सुनना जरा। दूसरा बोल आया है अनन्यम, जो अपने आत्मा को अन्न अन्न ना देखकर, चार गति वाला ना देखकर, 84 लाख योनि वाला ना देखकर, उस आत्मा को एक ज्ञायक मात्र देखता है, उसका क्षेत्र परावर्तन समाप्त हो जाता है। ये अनन्य शब्द से बता रहे हैं ना, क्योंकि अनन्य में चारों गति परिभ्रमण करता है, अन चारों गतियों में अलग अलग पर्याय होती हैं, उनमें अगर जो अपनत्व बुद्धि करता है उस अनन्य पणे को अपना स्वरूप जो मानता है तो क्षेत्र परावर्तन चालू रहता है, और उन अनन्य पणे में अपने अनन्य स्वभाव को जो प्रकट करता है उसका क्षेत्र परावर्तन मिट जाता है। समझ में आया? तीसरी बात, हालांकि इसमें पांच उदाहरण अलग आए हैं, कमलिनी का दृष्टांत आया है, हैं इस प्रकार के जो पांच दृष्टांत आए हैं वे पढ़ोगे तो और विषय स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन अभी हम संक्षेप में बता रहे हैं। तीसरा आया है नियतम, ऐसा में आत्मा तो नियत स्वभाव वाला है, जो नियत स्वभाव माने हो गया किसकी अपेक्षा हो गया, वो काल की अपेक्षा हो गया है, तो एक क्षेत्र परावर्तन होता है, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, तीसरा अगर आत्मा के नियत स्वभाव को देखोगे और उसमें परिणमन स्वभाव को गौर कर दोगे तो समझ लीजिए काल परावर्तन मिट जाएगा। समझ में आया? और चौथा आया है अविशेष मसंयुक्तम, अविशेष माने विशेष, विशेष से रहित, उसको अविशेष कहते, अविशेष माने विशेषों से रहे, और आत्मा में विशेष क्या है, गुण भेद, ये आत्मा के विशेष है। समझ आया? तो गुण भेद को कहते हैं भाव, क्या कहते हैं, भाव। तो परावर्तनों में एक भाव परावर्तन है, अगर अपने को भेद रूप देखोगे तो परावर्तन, भाव परावर्तन चलते रहेगा, मिटेगा नहीं, और अगर अपने को अभेद देखोगे तो भाव परावर्तन मिटे बिना। और अब आता है असंयुक्तम, असंयुक्त माने विकारी भावों से मैं संयुक्त नहीं हूं, विकारी भाव विकारी भाव में है, मैं मेरे में हूं, समझ कि नहीं, तो उनको जो अगर मिला हुआ देखेगा तो भाव परावर्तन मिटने वाला। समझ आया? तो पांच परावर्तन का अगर अभाव करना हो तो अपने को अनबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त इस भाव रूप देखे तो उसके पंच परावर्तन मिट जाएंगे, और इस भाव रूप देखने वाले का नाम है शुद्ध नय। क्या नाम है? किस नय से ये देखा जाता है, कौन नय दिखाता है, वो शुद्ध नय दिखाता है। अब एक ध्यान रखना, आत्मा इन पांच भाव रूप स्वभाव से, और उस स्वभाव को दिखाने वाले नए को शुद्ध नय कहते हैं, शुद्ध नय ने दिखाया इसलिए स्वभाव है, ऐसा नहीं। क्या कह रहे? ऐसे ही स्वभाव है, और ऐसे स्वभाव को जो दिखाए उसका नाम शुद्ध नय। नयों के अधीन आत्मा का स्वभाव नहीं, लेकिन कथन नयों के अधीन है, स्वाधीन नहीं होता, कथन की कमजोरी है, ये वाणी की कमजोरी है, वस्तु स्वरूप की कमजोरी। तो जब वाणी में बात चलेगी तो उसमें कथन सापेक्ष ही आएगा, वस्तु स्वभाव का जब अनुभव होगा वो निरपेक्ष ही होगा, सापेक्ष हो सकता नहीं, वस्तु स्वभाव सापेक्ष हो जाए तो वस्तु की स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी, और कथन अगर सर्वथा निरपेक्ष हो जाए तो कथन खंडित हो जाएगा, वो अनेकांत नहीं रहेगा। कई ख्याल एक बात अभी आगे, ये तो 14 नंबर की गाथा में शुद्ध नय का ज्ञान कराया, अभी 15 अभी 14 नंबर की गाथा के दो बिंदु, शुद्ध नय 46 नंबर पर, शुद्ध नय आत्मा को अबद्ध अस्पृष्ट, ये एक हो गया, दूसरा तुम्हारे से अनन्य क्षेत्र अपेक्षा हो गया, नियत काल अपेक्षा हो गया, अविशेष भाव अपेक्षा हो गया, असंयुक्त भाव अपेक्षा हो गया। समझ आएगा नहीं? इन पांच प्रकार के भाव रूप जो अपने आत्मा को देखता है, ये उसका यह देखना परमार्थ है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, शुद्ध नय है, यथार्थ है, अनुभूति गम। समझ आएगा नहीं? अनुभव गम। यद्यपि अब देखो, ये यद्यपि आ गया फिर से, ये यद्यपि माने जितनी बात कह चुके उतना ही और कहने वाले हैं। यद्यपि पर्याय दृष्टि से कर्मों से आत्मा बद्ध है, ये बात झूठ नहीं है। सुनो जरा, झूठ क्यों नहीं है? क्योंकि किस दृष्टि से बात चल रही है? तत्वार सूत्र में एक सूत्र आया है, कर्म का और आत्मा का संबंध कब से है? अनादि संबंध है। तो वो सूत्र सही है कि गलत है? वो अनादि संबंध की बात कर रहा है, तो अनादि संबंध पर्याय में है कि नहीं? तो पर्याय से, पर्याय दृष्टि से पर्याय के कथन को देखो तो भूतार्थ ऐसा इसमें लिखा है, समझ आया कि नहीं। और पर्याय को स्वभाव के समीप जाकर देखो तो ये पांचों कथन जो इसमें आए हैं, बद्ध स्पृष्टपना, अनन्यपना, अनियतपना, विशेषपना और संयुक्तपना, ये भूतार्थ है। देखो लिखा ना भूतार्थ। तथापि पर्याय से हटकर स्वभाव के समीप जाकर द्रव दृष्टि या शुद्ध नय की दृष्टि से देखा जाए तो ये पांचों ही भाव अभूतार्थ हैं, आत्म स्वभाव में न कभी प्रविष्ट हुए हैं न कभी प्रविष्ट क्या कहते, लेकिन पर्याय में अनादि से रहे हैं और स्वभाव के आलंबन लेने पर वे भाव का अभाव हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? तो रहे हैं इस फैक्ट को स्वीकार करना कि नहीं करना। ज्ञान वस्तु को ज्यों का त्यों जानता है कि हीना दिख जानता है, मनुष्य सम्यक ज्ञान की परिभाषा, अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीता। यद्यपि आपको बोला जाएगा बी 22 होशियार बनो, नॉट ओवर 22, नॉट अंडर 22 एंड नॉट अदरवाइज। क्या ख्याल में ये तीन दोष है सम्यक ज्ञान के। ओवर वाइज माने अधिक जानने लगा है, जो आत्मा में धर्म नहीं है वो धर्म मानने लगा है, इनके आशीर्वाद से हमारा कल्याण हो गया है, थोड़ा ज्यादा एक धर्म बढ़ गया उस द्रव्य में। क्या कह रहे ध्यान से सुनना जरा, इसलिए ओवर वाइज हो गया है। अंडर वाइज वो है कि जो वस्तु में सामर्थ्य है उसका निषेध करे, हाँ कम माने, थोड़ा सा हीन माने, वो अंडरवाइज। और अदरवाइज की तो बात ही क्या करना, अदरवाइज वो है जो विपरीत ही बोले, नहीं आत्मा तो नित्य ही है, अनित्य है ही नहीं कोई अपेक्षा, ये अदरवाइज है। और ये मिथ्या दर्शन है, ये मिथ्या ज्ञान है। जिनका ज्ञान मिथ्या होता है उनका निर्णय सम्यक नहीं होता, सम्यक निर्णय बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। चलिए पंद्रहवीं गाथा, जल्दी जल्दी चलना, आखिरी बात है, कहीं छूट ना जाए कुछ। विदाई की बेला में जो बोलना हो शॉर्ट बोल लो, समझ। देखो देखो पंद्रहवीं गाथा पे आ रहे, पंद्रहवीं गाथा पढ़ते जरा, देखो जरा क्या लिखा है पंद्रहवीं गाथा में। जो पश्य अपान अवध पुटम अनन्य विशेषम अवदेश संत मध्यम पश्यति जिन शासनम सबम। हाँ पढ़ी, जो अपने आत्मा को देखता है, कैसा देखता है, अबद्ध पुट्ठम माने अबद्ध स्पष्ट अहन में, और अनन्यम अनन्य देखता है, और अविशेषम विशेष रहित देखता है। और दो उपलक्षण से ग्रहण कर लेना, जब पांच की जोड़ी है उनमें से पहले पांच गिनाए, इसमें छंदानुरोध बस तीन गिनाए, तो दो उपलक्षण से ग्रहण किए जाते हैं, ऐसे उसकी टीका में लिखा है, सही में। तो पांचवें को ले लेना, जो आत्मा को अवध स्पृष्ट अनन्य अविशेष और असंयुक्त रूप में जानता है वो अपदेश संत मध्यम। वो वास्तव में अपदेश का अर्थ होता है द्रव्य आगम, द्रव्य सूत्र, द्रव्य श्रोत और अपने अंत मध्यम माने अपने स्वभाव को जो देखता है वो है भाव रूप श्रुत ज्ञान। तो जिसने अपने आत्मा को भली भांति पांच भाव रूप देख लिया है अवध स्पृष्ट आदि, उसने द्रव्य श्रुत को भी जान लिया है और उसने भाव श्रुत को भी जान लिया। द्रव्य श्रुत को तो इसलिए जान लिया कि संपूर्ण जैन शासन माने जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा, जिनेन्द्र का उपदेश, उसको शासन कहते हैं, उस उपदेश में कितना विस्तार आया, द्वादश अंग का कितना विस्तार आया, उसमें सार कितना आया, तो एक शुद्धात्मा का अनुभव कराना ये सार आया। तो जब उसने एक शुद्धात्मा का अनुभव किया तो उसने भाव को भी देख लिया, भाव जिन शासन को देख लिया, और उसके विस्तार को जाना, द्वादशांग रूप विस्तार को भी जाना, तो द्रव्य शासन को भी देख लिया, तो उसने जिन शासन सकल द्रव्य और भाव रूप तो है ही सारा जिन शासन, और उस सब का सार और सबका विस्तार दोनों ही जिसने देख लिए हैं, उसने जिन शासन को देख लिया है संपूर्ण जिन शासन सकल देखे। और अब बिंदु देखो, जो अपने आत्मा को अवध स्पष्ट आदि पांचों भाव रूप देखता है या अनुभव करता है, वह संपूर्ण जिन शासन को देखता या अनुभव करता है। संपूर्ण जिन शासन द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत रूप है, वहां शुद्धात्मा का निर्विकल्प स्वसंवेदन भाव श्रुत ज्ञान और सविकल्प भेद रूप से जानना वह द्रव्य श्रुत ज्ञान अथवा भाव श्रुत तो अनुभव रूप है और द्रव्य श्रुत शब्द विस्तार और विकल्प रूप है। ऐसा जिन्होंने दोनों तरीके से देख लिया है, तो अब जैन शासन में द्रव्य में भी कुछ देखने को बाकी नहीं रहा और अंतरंग भाव में भी कुछ देखने को बाकी नहीं रहा, तो उसने सारा जैन शासन देख लिया। एक पंद्रहवीं गाथा है और आज की आखिरी गाथा सोलहवीं, मैं पूरा टाइम करूंगा, मुझे मालूम है मुझे क्या और बताना है। चाहे सोलहवीं गाथा को निकाली जरा। दंशनान चरेतान सेवितव्यान साहुणान चम तानि पुण जान तिन्वि अपानं चेवने चेदो। गाथा में आया है दंशनान चरितानि, दर्शन सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र, अथवा दर्शन ज्ञान और चारित्र। सेवितव्यानि साहुणानि चम, साहुणा माने साधुओं द्वारा, अनिचम माने हमेशा, सेवितव्यानि माने सेवन किया जाना चाहिए, किसका? दर्शन ज्ञान और चारित्र का सेवन किया जाना चाहिए। पर इन तीन के सेवन का मतलब क्या है? नीचे लाइन में लिखा तानी पुण जान तिन्नी, उन तीनों को जानो। क्या जानो? भी अपानम आत्मा जानो। तो एक आत्मा का सेवन करना माने तीनों का सेवन हो गया। तीनों का सेवन किया ये व्यवहार है, एक आत्मा का सेवन किया ये। समझ में आ रही कि नहीं बात भैया? है आ रही है? आएगी? नहीं आए तो दोबारा अगर आपको समझने का विचार हो तो बुला लेना, नहीं तो समझने वाले बहुत इमारत है। ये लाइन लगी है तो उन्हें समझना, ये चीज सही में आएगी नहीं? जिंदगी पूरी लगा देंगे तो समझने वालों की कमी आने वाली, क्योंकि वस्तु स्वरूप ऐसा है, ये चीज कोई अनोखी है, ये कहीं मिलती ही नहीं। ये हमें सोनगढ़ से मिल गई है, अब हम सारे देश में उसको एजेंसी लेके बांट रहे हैं। हाँ ऐसा। और किसी को भ्रम हो जाए कि ये मूल कंपनी का माल नहीं है, तो उसका भ्रम निकालने के लिए हमारे पास उतने सब प्रूफ कि तुम्हें सिखा देंगे कि मूल आचार्यों की कंपनी जो अभी तक चली 2000 वर्ष तक गुरुदेव तक, बिल्कुल वो ही माल है, जरा भी फेर नहीं। हाँ वाणी में तुम्हें कदाचित अंतर नजर भी आ सकता है, तो कोई मुख्यता गौरता की अपेक्षा अंतर आ सकता है, अभिप्राय में अंतर नहीं। ये जरूरी नहीं है कि थाली में 10 चीजें परसी हों तो तुम पहले जिसको खाओ उसको हम भी खाएं। हो सकता है हम कहीं दूसरे से चालू करें, आप कहीं दूसरे से चालू करो, लेकिन प्रयोजन क्या है आपका और हमारा? भूख मिटाना है कि कुछ और है? आप लड्डुआ से चालू करो, हमें लड्डू पसंद नहीं, सही में आया नहीं, तो हम रोटी से चालू करेंगे। मगर वो सब चालू करने में अभिप्राय क्या निहित है? एक ही अभिप्राय है कि भिन्न अभिप्राय है? जिनागम के वक्ताओं के वाणी तो कथन भेद हो सकता है, अभिप्राय भेद हो नहीं सकता है, और अभिप्राय भेद हो तो वो जैन विद्वान नहीं हो सकता। क्या ही कल चलिए वापस आ रहे हैं। बिंदु देखिए जरा इसके, साधु पुरुष को दर्शन ज्ञान तथा चारित्र का ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों आत्मा ही हैं, अन्न नहीं। भेद से कहो तो ये तीन कहने में आते हैं, अभेद से कहो तो एक आत्मा ही का नाम है। ये तीन अकेला नहीं, अनंत गुण जो है वे सब आत्मा ही है, क्योंकि अभेद में जो तीन ही गुण अकेले नहीं आए। इन तीन की तो मोक्ष मार्ग की अपेक्षा मुख्य बने चर्चा है। ये तीनों आत्मा से अभेद है, माने एक आत्मा को जिसने जाना, इन तीन को तो जान ही लिया, लेकिन इन तीन के साथ अनंतों को जान लिया, समझाए, अनंत को जान लिया। और इसीलिए सम्यक दर्शन होने पर अनंत अनंत गुणों से सम्यक, सम्यक दर्शन अनंत गुणों में शुद्धि लाता, क्योंकि अभेद ऐसा है जिसमें अनंत गुण गर्भित है। उस अभेद के आश्रय से जो शुद्धि प्रकटेगी, वो एक गुण की शुद्धि नहीं प्रकटेगी, अनंत गुणों की शुद्धि हो जाएगी। अनंत गुणों से सम्यक, अनंत गुण गुण के अंशों में सम्यक निर्मल पने प्रकट होता, फिर उसकी वृद्धि होते, केवल ज्ञान होने पर वे गुण पूर्ण हो जाते। चलिए यहाँ कहते हैं, इस प्रकार आत्मा के अनुभव में दर्शन ज्ञान चार तीनों घर में। अंतिम बिंदु 51 नंबर का बिंदु है, ये अंक बहुत अच्छा है। हमें तो आपने कहा था कि 50 बिंदु बनाना, ज्यादा नहीं बनाना, पर वो एक हमारा ज्यादा बन गया है, वो 50 ही है, वो एक 50 को कहने वाला। इसलिए प्रमाण दृष्टि में देखो, रियल 50 को कह रहा है, जरा देखो जरा बिंदु को पढ़ते हैं। प्रमाण दृष्टि में वस्तु सदा द्रव्य पर्याय रूप है। किस रूप है वस्तु? किस काल में? त्रिकाल में। किस रूप है? द्रव्य पर्याय रूप है। किसी भी काल में, अरे दृष्टि के जोर के काल में वो द्रव्य पर्याय दिखे नहीं, अलग बात है, लेकिन कोई द्रव्य में से पर्याय का अभाव हो गया ऐसा नहीं। इसलिए द्रव्य पर्याय रूप है, परंतु देखो अभी आधी बात कही है हमने, पूरी नहीं कही, अब कह रहे हैं पूरी। परंतु शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा अभेद रूप एक या एकाकार रूप है, तथा व्यवहार दृष्टि में भेद रूप अनेक या अनेकाकार रूप है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि में आत्मा एकाकार अनुभव रूप है, इस द्रव्य दृष्टि में पर्याय दृष्टि गौण होती है। क्या लिखा है? पर्याय दृष्टि गौण होती है, द्रव्य दृष्टि मुख्य होती है, उसमें शुद्धात्मा का अनुभव होता है, पर्याय दृष्टि के आश्रय से शुद्धात्मा का अनुभव नहीं होता। और इसीलिए शायद यहाँ कहीं लिखा ना, द्रव्य दृष्टि तेज सम्यक दृष्टि, यानी पर्याय दृष्टि तेज। अभी सुनो जरा, पर्याय दृष्टि वाले मिथ्या दृष्टि होते हैं, पर्याय के जानने वाले मिथ्या दृष्टि नहीं होते हैं। जो पर्याय को नहीं जानते वे मिथ्या दृष्टि अवश्य। क्या कह रहे? यानी पर्याय का जानना अपराध नहीं है, पर्याय में एक तत्व बुद्धि और इससे मेरा भला होगा, ये अपराध है। जानना तो सम्यक ज्ञान। क्या कह रहे? इसलिए जानना जरूरी, ज्यों का त्यों जानना। अभी जरा अब मैं अंतिम बात करता हूँ, 16 गाथाएं बोल दूं पहले आपके सामने, क्या मर्म है 16 गाथाएं जो अपनी चल चुकी है। बिल्कुल मैं शुरू से बोलता हूँ और बंद करके बोलता हूँ, वो और वहां हमें कहीं देखने का इतना टाइम नहीं। पहली गाथा में ये बात आई, अब सुन लो 16 गाथाओं का रिविजन। पहली गाथा में ये बात आई कि जो ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त समस्त सिद्ध हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, और उन्हें नमस्कार करने के बाद मैं समय पाहुड़ को कहूंगा, समय सार को कहूंगा, एक प्रतिज्ञा की। दूसरी गाथा में समय क्या है तो उसको दो तरीके से बताया, स्वसमय और परसमय। जो अपने दर्शन ज्ञान चार स्वभाव में स्थित है वो स्वसमय है, और जो कर्म प्रदेशों में, संयोगों में, विकारों में स्थित है, पर्याय में स्थित है, भेदों में स्थित है, वो परसमय। तीसरी गाथा में ये बताया कि आत्मा में द्वैत है क्या? तो कह नहीं, अर्थ एतद बाध्यते। अब ये दो प्रकार के समय में बाधा बताते हैं, तो ये बाधा बताई कि वास्तव में एकत्व निश्चय को प्राप्त आत्मा ही इस जगत में सुंदर है,
उसमें अन्य की चर्चा करना, बंधन की चर्चा करना, पर समय पड़ने की चर्चा करना विषमवाद पैदा करने वाली। तो मुझे भी ये लगा लोक व्यवहार की भी शिक्षा इसमें ये मिलती है कि जितने विषमवाद होते हैं अन्य व्यक्तियों की चर्चा में होते हैं, और जितने विषमवाद मिटते हैं वे स्वभाव के आश्रय से मिटते। इसलिए तुम व्यक्ति को गौर कर देना और स्वभाव को मुक्त कर देना, तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि होने की गारंटी लेते आचार्य। हमने हम तो जो बोलते उनकी तरफ से, ऐसे जैसे कोई दूत को भेजा जाए, अभी भारत का दूत अमेरिका जाए तो यद्यपि वो राजा नहीं है लेकिन जो भाषा बोलेगा वो राजा वाली बोलेगा। क्यों बोलेगा? क्योंकि उसके बल है। किसका बल है? राजा का बल है। वो राजा का प्रतिनिधि बन के गया है। हम जो बोलते हैं उन आचार्य से लेके गुरुदेव तक का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस हिम्मत को लेके चलते हैं, किसी के भरोसे नहीं बोला करते। इसलिए उस बात को दृढ़ता से रखते हैं। समुद्र भद्र का थोड़ा तो अनुकरण हो गए क्या है? चलिए वापस आ रहे हैं, अभी अपने पास 5 मिनट है, 6 मिनट सही है, मैं उधर खत्म कर दूंगा। हमारा अपने रजनी भाई का आदेश था कि 45 से खेला, उनका ठीक आप आदेश दो क्योंकि अभी यहाँ आपका आप जो बोलोगे हमें वो करना, मगर जो आप बोलने को कहोगे वो नहीं बोलना। समझ में आया? हम आपके अनुशासन में तो रहेंगे लेकिन अपनी स्वतंत्रता को नहीं खोएंगे। ऐसी बात है, ऐसी हमारी दृष्टि है और इस दृष्टि से सब जगह जाते हैं, और वे दोबारा न सुने तो बड़ा आनंद होता है। क्यों? आनंद इस बात का होता है कि चलो दूसरों के भाग जाग रहे हैं। ऐसी बात है। चलिए वापस आ रहे हैं। हाँ, तो वो तीसरी गाथा में एकत्व निश्चय को प्राप्त आत्मा ही जगत में सुंदर है, अन्य की चर्चा उसमें विषमवाद पैदा करने वाली है। चौथी गाथा में कहा, शिष्य ने पूछा क्या ऐसा आत्मा हमने कभी सुना नहीं, परिचय किया नहीं, अनुभव किया नहीं? कहा हाँ, तुमने काम भोग बंधन की चर्चा अनंत बार सुनी भी है, परिचय की भी है, अनुभव की है, और तुम्हारे घर में जितने सब आचार्य हैं इसके काय के आचार्य, काम भोग बंधन की कथा सुनाने और समझाने और एकाकार कराने वाले, सही आया कि नहीं? लेकिन एकत्व तो विभक्त आत्मा की चर्चा कभी न तो सच्चे अर्थों में सुनने में आई है, न परिचय में आई है, और न अनुभव में आई है। तुम्हें कदाचित दिव्य ध्वनि में भी सुनने मिली हो लेकिन सुनना सुनाने वाले के अधीन नहीं है। सुनने वाला उसका भाव ग्रहण करे तो सुनना कहलाता है, नहीं तो अनसुना हो जाता है। तो चौथी गाथा में कहा था। पांचवी गाथा में कुंद कुंदाचार्य ने समय बर्बाद किए बगैर बोले, मैं उसे एकत्र विभक्त आत्मा को निज वैभव से दिखाऊंगा, अगर दिखाऊं तो तुम प्रमाण करना। शिष्य भी इतना तैयार था, उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया, को असम शुद्धात्मा की चेत, वो शुद्धात्मा कौन है हमें दिखाइए। तो बोले वो शुद्धात्मा ना अप्रमत्त है न प्रमत्त है, वो देखा एक भाव है और वो शुद्ध है और अनुभव गोचर है। ज्ञान तो वो तो वही है, मतलब वाणी का विषय नहीं है, अनुभव का विषय। तो कहते हैं क्या आत्मा में अशुद्धि है ही नहीं क्या? मगर मुझे तो ये लगता है कि आत्मा में दर्शन का भेद है, आत्मा में ज्ञान का भेद है, आत्मा में चार्क का भेद है, तो ये भेद जनित तो अशुद्धि होना चाहिए आत्मा में। आचार्य कहते हैं आत्मा में दर्शन नहीं है, आत्मा में ज्ञान नहीं है, आत्मा में चारित्र नहीं, ये भाषा बोल रहे हैं। और कहने का अभिप्राय ये है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में चारित्र है, लेकिन इसका भेद नहीं है। तो वो हो गई सातवीं गाथा। तो शिष्य कहता है कि जब अशुद्ध है ही नहीं तो शुद्ध को बताने वाला एक परमार्थ नय निश्चय नय का उपदेश जिनादों में होना चाहिए, व्यवहार का उपदेश क्यों दिया? क्योंकि नहीं, अनार्य को अनार्य की भाषा में समझाना पड़ता है। ऐसे जगत जन व्यवहारी हैं, इन व्यवहारियों को व्यवहार की भाषा में परमार्थ समझाया जाता है, व्यवहार की भाषा में परमार्थ समझाया जाता है, व्यवहार नहीं समझाया जाता। समझाया? इसलिए जो व्यवहार में की भाषा है वो परमार्थ को समझाने वाली है, और कैसे वो हमने अभी आगे बता देंगे। तो शिष्य कहता किस तरीके से वो व्यवहार परमार्थ को समझाता है, तो कहे व्यवहार प्रतिपादन करता है, निश्चय प्रतिपाद होता है, हैं? और उसमें दो गाथाएं रची, वो दो गाथाएं कौन सी रची थी उन्होंने, नौवीं और दसवीं, और उसमें ये दो गाथाओं में ये बात कही कि जो अपने श्रुतक ज्ञान से अपने ज्ञायक स्वभाव में नियत होकर उसको निर्विकल्प होकर जानता है वो तो श्रुत केवली है, कौन सा निश्चय श्रुत केवली, और जो सर्व द्वादशांग को जानता है माने द्वादशांग रूप भेद को जानता है वो व्यवहार श्रुत केवली। इस तरह से सर्व द्वादशांग के जानने का भी प्रयोजन एक शुद्धात्मा को जानना है, इस कारण से सारे द्वादशांग ने एक शुद्धात्मा दिखाया है, इस कारण से वो प्रतिपादक हो गया और ये प्रतिपाद्य हो गया। तो किसी जब इतना अच्छा गुण है इसमें व्यवहार में कि वो हमारी प्रशंसा करता है, हमारा स्वभाव दिखाता है, तो ये अनुसरण करने योग्य क्यों नहीं, कहीं इसका जो कथन है ना व्यवहार का वो अभूतार्थ अविद्यमान अर्थ को कहता है, उपचार कथन करता है, वस्तु स्वरूप को नहीं बताता, और व्यवहार और शुद्ध नए वो भूतार्थ है, अकेला भूतार्थ है, सब प्रकार के व्यवहार नए अभूतार्थ है, और वो शुद्ध नए भूतार्थ है, क्योंकि वो शुद्ध स्वरूप को दिखाता है, अभेद को दिखाता है, भेदों में नहीं ले जाता है, भेदों से हटाकर अभेद में स्थापित करता है और अनुभूति में लाके खड़ा कर देता है, समझ में आएगा नहीं, इसलिए व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य। तो शिष्य कहता है कि व्यवहार में बिल्कुल किसी को प्रयोजनवान नहीं है, तो बारहवीं गाथा में कहते हैं हाँ हाँ किसी को, जिसने परम भाव के दर्शन किए हैं उसको तो निश्चय से सीधा उपदेश समझना चाहिए, और जिसने अपरम भाव में जो ठहरा है, दर्शन अभी पूर्णता नहीं हुई है, उसे व्यवहार से यथा पदवी जो व्यवहार है उसके लिए है वो उसको समझाया जाना प्रयोजनवान है, लेकिन उस व्यवहार में कर्तृत्व तो नहीं समझा रहे हैं, अकर्तृत्व तो समझा रहे, ये भूमिका में ये व्यवहार आएगा, और तुम अपनी दृष्टि से उसके अकर्ता बनकर इस व्यवहार से भी हटकर स्वभाव में चले जाना, लेकिन इस व्यवहार को छोड़ के पाप में मत जाना। क्या कह रहे सही नायक जी, अब कहां तक आ गए अपन, बारहवीं गाथा तक आ गए, तेरहवीं गाथा तो अब भी ली है, उसमें ये बताया है कि जो भूतार्थ से सात तत्वों को जानता है वो वास्तव में सात तत्वों का जानना सम्यक दर्शन, और उसमें खुलासा ये कर दिया कि सात तत्वों का भूतार्थ से जानने का अर्थ ये है कि उनमें अभेद एक छिपी हुई ज्योति को सामने प्रकट करना विकल्प से, और फिर निर्विकल्प होकर उसका अनुभव करना, ये भूतार्थ ने से जानना कहलाता है, इसी को सम्यक दर्शन कहते हैं, इसी को श्रद्धा कहते हैं, सम्यक श्रद्धा कहते हैं, इसी का नाम ज्ञानानुभूति है, इसी का नाम आत्मख्याति है, इसी का नाम आत्मानुभूति। फिर क्या आया चौदहवीं पंद्रहवीं गाथा, जिसमें शुद्ध नय का विषय बताया, शुद्ध नय का विषय क्या है, अबद्ध अस्पृष्ट अनन्य अविशेष और नियत जो आत्मा है, इस आत्मा ऐसे आत्मा को जो अभेद ग्रहण करता है वो शुद्ध नय है, और पंद्रहवीं गाथा में क्या बताया है, ऐसे विषय को जो जानता है वो द्रव्य श्रुत को भी जानता है, भाव श्रुत को भी जानता है, इसलिए उसने सारा जैन शासन देख लिया, और सोलहवीं गाथा में ये कहा कि दर्शन ज्ञान चाट का सेवन करना चाहिए साधु जनों को निरंतर है, क्योंकि वो तीनों का सेवन जो करना चाहे वो वास्तव में एक आत्मा का सेवन करे तो तीनों का सेवन हो जाए। यानी यहां तक की बात मेरी पूरी हो गई और यहाँ का टाइम पूरा हो गया, इसलिए मैं खाली गाथा पढ़ एक श्लोक पढ़ रहा हूं, उसका चिंतन आप करते रहना, नहीं मैं चाहता था मगर टाइम हो गया। वो श्लोक ये है, आत्म स्वभावम पर भाव भिन्न मां पूर्ण माद्यंत विमुक्त एकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शोधन युद्धेति। शुद्ध नय का वैभव ये है कि वो शुद्धात्मा को प्रकाशित करता है, सारे भेद ज्ञान की सीढ़ियां चढ़ जाता है, प्रभाव से भिन्न है और आदि अंत से रहित एकाकार है, इस प्रकार का जो संकल्प विकल्प का विषय नहीं है, ऐसा जो आत्मा का एक अभेद स्वभाव है वो वास्तव में दृष्टि का विषय है, और शुद्ध नय की अनुभूति का शुद्ध नय के द्वारा आत्मानुभूति का कारण, ऐसा मैंने जो आठ दिन में जो भी आपके सामने रखा अपने पास शुद्ध ज्ञान का अंश है, थोड़ा सा, थोड़ा बिंदु बराबर भी है, इसलिए इसमें बोलने में चूक होना संभव है। अगर कहीं चूक हुई हो तो आप हमें क्षमा करना, और कुछ अच्छाई नजर आई हो तो वो हमारे गुरुओं की है, मेरी नहीं है, ऐसा जान के ग्रहण करना।
Hello.